एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम रुक कर रहे हैं ऑस्ट्रियाई लेखक पीटर हैंडके के एक ऐसे उपन्यास की ओर जो पाठक के जहन में बेचैनी की एक महीन परत छोड़ जाता है, द एंग्स्ट द स्टारमॉन्स बायम एल्फ मेटर, यानी गोलकीपर की पेनल्टी किक पर चिंता।
पीटर हैंके, हाँ, 1960 के दशक के जर्मन भाषी साहित्य के अवंदगांड, मतलब जो स्थापित नियमों को चुनौती देते हैं, उस प्रयोगधर्मी आंदोलन से निकले एक अहम और कहना चाहिए कभी कभी विवादास्पद नाम।
हाँ, विवादास्पद तो रहे हैं।
बिल्कुल, उनकी लेखनी भाषा की बनावट यथार्थ की हमारी समझ और चेतना की परतों को खुरेदती है। 2019 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैंडके ऐसे लेखक हैं जो पाठक से सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि उनके साथ सोचने और दुनिया को देखने के अपने नजरिए पर ही सवाल उठाने की उम्मीद रखते हैं। शायद इसकी ऊपरी सतह को ही छूना होगा।
सही कहा, कई आलोचक इसे एंटी थ्रिलर कहते हैं, मतलब ये थ्रिलर के ढांचे का इस्तेमाल तो करता है लेकिन किसी रहस्य को सुलझाने के लिए नहीं बल्कि आधुनिक इंसान के मन की उलझनों, उसके अलगाव और वास्तविकता से उसके टूटते रिश्ते को दिखाने के लिए।
और वो दौर में तो था 70 का दशक, जब यूरोप सामाजिक बदलावों और एक तरह के मोहभंग की स्थिति से गुजर रहा था।
हाँ हाँ, उसकी छाया हमें इस कहानी में भी महसूस होती है। बिल्कुल,
तो आज हम इसी उपन्यास के संसार में उतरेंगे। कहानी के मुख्य पात्र जोसेफ ब्लोक के साथ उसके मानसिक सफर को देखेंगे, हैंडके की अनोखी शैली पर गौर करेंगे और उन गहराते सवालों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो ये किताब हमारे सामने रखती है।
तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण, लगभग बेमानी सी लगने वाली घटना से। हाँ, जोसेफ ब्लोक, जो कभी एक नामी फुटबॉल गोलकीपर रह चुका है, अब वियना में एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। एक सुबह जब वो काम पर पहुंचता है तो उसका फोरमैन, जो शायद किसी और ही ख्याल में है, बस ऊपर की तरफ देखता है। कोई शब्द नहीं, कोई इशारा नहीं, बस एक नजर।
और ब्लॉक के लिए बस इतनी काफी है।
वो इस नजर का अर्थ निकालता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वो पलटता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। यहाँ हैंडके हमें शुरुआत में ही उस चीज की झलक दे देते हैं जो उपन्यास का केंद्र बनने वाली है, चीजों का होना और उनके अर्थों का लगाया जाना, मतलब इन दोनों के बीच की खाई।
क्या उसे सचमुच निकाला गया था?
ये सवाल अनुत्तरित रह जाता है क्योंकि ब्लॉक के लिए उसका मान लेना ही सच्चाई बन जाता है।
और यहीं से?
यहीं से उसका बाहरी दुनिया से नाता टूटने लगता है, है ना?
हाँ, बिल्कुल।
ये छोटी सी घटना, जो शायद एक गलतफहमी ही हो, उसके भीतर एक बड़े बदलाव की शुरुआत करती है। वो अब दुनिया में भागीदार नहीं रहता बल्कि एक दर्शक बन जाता है।
एक दर्शक, और वो भी कैसा, एक बेहद चौकन्ना, लगभग जुनूनी दर्शक। नौकरी छोड़ने या समझे जाने के बाद वो वियना की सड़कों पर यूं ही भटकने लगता है। उसकी आंखें हर छोटी बड़ी चीज को स्कैन कर रही हैं, लोगों के हाव भाव, दुकानों के नाम, अखबारों की सुर्खियां, राह चलते लोगों की अधूरी बातें,
जैसे
सब कुछ कोई पहेली हो।
हाँ, ऐसा लगता है मानो ये सारी दुनिया संकेतों और इशारों का एक जाल है जिसे वो समझने की कोशिश कर रहा है, या शायद जिससे वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है।
हर चीज उसके लिए मायने रखने लगती है, पर वो मायने क्या हैं ये स्पष्ट नहीं होता।
ये दिलचस्प है कि कैसे हैंडके बाहरी यथार्थ को फिल्टर करके सिर्फ ब्लॉक की नजर से हमें दिखाते हैं। वस्तुनिष्ठ सच्चाई क्या है, ये जैसे गौण हो जाता है।
बिल्कुल, महत्वपूर्ण ये है कि ब्लॉक दुनिया को कैसे देख रहा है, कैसे उसकी व्याख्या कर रहा है।
ये एक तरह से पाठक को भी उसी अनिश्चितता में डाल देता है जिसमें ब्लॉक खुद है। हम भी बाहरी संकेतों से अर्थ निकालने को मजबूर हो जाते हैं।
सही बात है। इसी भटकन के दौरान वो एक सिनेमा घर जाता है और वहां उसकी मुलाकात कैशियर गैडा से होती है। बातचीत बहुत सामान्य है, सतही सी। वो गैडा के साथ उसके घर जाता है, रात बिताता है, सब कुछ बहुत आकस्मिक सा लगता है। लेकिन अगली सुबह
वो बिना किसी जाहिर वजह के, बिना किसी जुनून या गुस्से के आवेग के, गैडा का गला घोंट देता है। और हैंडेड जिस तरह इस घटना का वर्णन करते हैं, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। भाषा एक दिन सपाट, ठंडी, जैसे किसी रोजमर्रा के काम का जिक्र हो रहा हो। कोई नाटकीयता नहीं, कोई मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं।
ये पारंपरिक क्राइम नॉवल के बिल्कुल उलट है। वहां हत्या अक्सर कहानी का केंद्र होती है, जिसके पीछे मकसद, भावनाएं, जांच का पूरा ताना बाना होता है। यहाँ हत्या एक घटना है, लेकिन कहानी का फोकस हत्या पर नहीं बल्कि हत्या करने वाले की मानसिक स्थिति पर है, और हत्या कह सकते हैं कि उस स्थिति का एक लक्षण मात्र बनकर रह जाती है।
तो गेर्डा एक व्यक्ति कम ब्लॉक के टूटते हुए संसार का एक शिकार ज्यादा लगती है।
हाँ, ऐसा ही कुछ।
तो क्या यह हत्या ब्लॉक के अलगाव का चरम बिंदु है, मानवीय संबंध बनाने या महसूस करने कि उसकी क्षमता का पूरी तरह खत्म हो जाना?
हाँ, लगता तो यही है।
हिंसा यहाँ किसी बदले या जुनून का नतीजा नहीं, बल्कि एक तरह की अस्तित्वगत बीमारी का लक्षण है, जैसे जैसे शरीर का कोई अंग सुन्न पड़ जाए और उसे महसूस ही ना हो कि वो क्या कर रहा है।
बहुत अच्छी उपमा दी आपने, ऐसा ही लगता है। और हत्या के बाद उसका व्यवहार भी इसी ओर इशारा करता है। वो घबराता नहीं, भागता नहीं, बड़े इत्मीनान से अखबार में छपी हत्या की खबर पढ़ता है,
जैसे जैसे किसी और की कहानी पढ़ रहा हो।
बिल्कुल। फिर वो बस पकड़कर वियना से दूर ऑस्ट्रिया के ही एक छोटे सीमावर्ती कस्बे की तरफ निकल पड़ता है। ये पलायन भी किसी डर या अपराध बोध से ज्यादा
उसकी अंदरूनी स्थिति का बाहरी रूप लगता है, जैसे वो खुद को दुनिया के किनारे पर ले जा रहा हो।
हाँ हाँ,
ये सीमावर्ती कस्बा भी एक दिलचस्प चुनाव है। सीमा का मतलब ही है किनारा, एक ऐसी जगह जो दो दुनियाओं के बीच में हो। ये ब्लॉक की मानसिक स्थिति का प्रतीक बन जाता है, वो भी तो विवेक और अविवेक की सीमा पर ही खड़ा है, एक लिमिनल स्पेस जहां पुरानी पहचान धुंधली पड़ रही है और नई बन नहीं पा रही।
बिल्कुल। उस कस्बे में पहुंचकर उसकी हालत कह सकते हैं और बिगड़ती है। वो एक सराय में रुकता है, दिन भर गलियों में भटकता है, लोगों को घूरता है, उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। उसका शक, उसका पैरानोया, वो बढ़ता जाता है।
अच्छा, कैसे?
उसे लगता है हर चीज उसी के लिए एक संकेत है, एक कोड है। कोई बच्चा रोता है तो उसे लगता है ये पुलिस का इशारा है। मेज पर रखे फल उसे सुराग नजर आते हैं।
अरे,
स्थानीय लोग अगर अपनी बोली में बात करते हैं तो उसे लगता है वो उसी के बारे में खुसुर फुसुर कर रहे हैं।
भाषा का ये टूटना भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, ब्लॉक शब्दों और चीजों के सामान्य अर्थों पे भरोसा खो देता है।
हाँ।
वो अखबारों में छपे वाक्यों, विज्ञापनों की पंक्तियों, मुहावरों को दोहराता रहता है, मानो उनमें कोई गहरा छिपा हुआ मतलब तलाश रहा हो, लेकिन शब्द उसके लिए खोखले हो चुके हैं। संवाद असंभव सा हो जाता है, क्योंकि भाषा का साझा आधार ही दरक गया है।
सही कहा। वो बाहरी दुनिया को समझने के लिए एक निजी संकेतों की व्यवस्था, एक तरह का सिमियोटिक सिस्टम बना लेता है जो सिर्फ उसी के लिए मायने रखती है। हाँ, और मजे की बात देखिए, वो अखबारों में छपी अपनी ही की हुई हत्या की जांच की खबरें बड़े ध्यान से पढ़ता है, और अगर पुलिस से कोई तथ्यात्मक गलती हो जाती है तो मन ही मन उसे सुधारता है,
जैसे कोई बाहरी समीक्षक हो।
बिल्कुल। उसका बाहरी दुनिया से रिश्ता इतना कट चुका है कि वो अपनी ही जिंदगी की घटना को भी एक बाहरी वस्तु की तरह देख रहा है। कस्बे में सराई की मालकिन या दूसरी औरतों से उसके जो क्षणिक संपर्क होते हैं वो भी बेहद अजीब और दूरी बनाए रखने वाले हैं। उनमें कोई गर्मजोशी, कोई जुड़ाव नहीं। वो उन्हें भी बस देखता है किसी वैज्ञानिक की तरह जो प्रयोग के विषय का अध्ययन कर रहा हो।
तो धीरे धीरे ये साफ होता जाता है कि ब्लॉक की असली कैद कोई जेल नहीं बल्कि उसका अपना दिमाग है। हैंड के हमें उसके मन के अंदर ले जाकर बाहरी दुनिया को उसी की नजरों से दिखाते हैं, और ये अनुभव पाठक के लिए भी मतलब घुटन भरा हो सकता है।
हाँ।
ये हमें हैंड के मुख्य सरोकारों तक ले आता है, आधुनिक जीवन में व्यक्ति का अलगाव, भाषा की सीमाएं और यथार्थ की पकड़ का छूट जाना।
हाँ, इन विषयों पर थोड़ा और रुकें तो पहला और सबसे स्पष्ट है अलगाव, एलियनेशन।
हाँ।
ब्लॉक सिर्फ समाज से ही नहीं, अपने काम से, अपनी भावनाओं से, यहां तक कि अपने शरीर से भी कटा हुआ महसूस करता है। वो चीजों को महसूस करने के बजाय उनके बारे में सोचने लगता है। ये आधुनिक जीवन की एक चरम तस्वीर है।
और दूसरा, जैसा हमने जिक्र किया, भाषा की विफलता, फेलियर ऑफ लैंग्वेज। हैंड के दिखाते हैं कि कैसे भाषा, जो हमें दुनिया को समझने और व्यक्त करने का जरिया देती है, वही हमें सीमित भी कर सकती है।
सही।
जब शब्द अपने अर्थ खो देते हैं या जब हम यथार्थ को भाषा के बने बनाए ढांचों में ही देख पाते हैं तो क्या होता है? ब्लॉक के लिए भाषा एक जाल बन जाती है जिसमें वो फंस गया है।
तीसरा अहम बिंदु है धारणा की अविश्वसनीयता, अनरिलायबिलिटी ऑफ परसेप्शन। क्या जो हम देखते हैं वही सच है, या सच वो है जो हम देखना चाहते हैं या देखने के लिए कंडीशन किए गए हैं?
ये बड़ा सवाल है।
उपन्यास हमें ब्लॉक की नजरों से दुनिया दिखाता है जो खंडित है, अविश्वसनीय है। ये वस्तुनिष्ठ यथार्थ के विचार पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है।
और फिर है हिंसा की आकस्मिकता और अर्थहीनता, आर्बिट्रेरीनेस ऑफ वायलेंस। गेर्डा की हत्या बिना किसी मकसद के होती है। ये जुनून या बदले की हिंसा नहीं है, ये एक ठंडी यांत्रिक क्रिया है।
हाँ।
हैंडकेयर शायद ये दिखा रहे हैं कि जब इंसान अपने भीतर के जुड़ाव खो देता है, जब दुनिया अर्थहीन लगने लगती है, तो हिंसा भी उतनी ही सामान्य और आकस्मिक हो सकती है। ये एक बेहद असहज करने वाला विचार है।
बिल्कुल, और इन सब के मूल में शायद अस्तित्वगत भय है, एक ऐसी दुनिया में होने का एहसास जहां कोई तयशुदा अर्थ नहीं है, जहां पैटर्न खोजने की कोशिश बेकार साबित होती है। ब्लोक लगातार संकेतों और पैटर्न्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, शायद इसी डर से कि कहीं कोई पैटर्न है ही नहीं।
और हैंड के इन विचारों को सिर्फ कहानी के जरिए नहीं बल्कि अपनी विशिष्ट शैली से भी उभारते हैं। वर्णन का तरीका, भाषा का चुनाव, सब कुछ मिलकर उस अनुभव को रचता है।
हाँ, जैसे कि नैरेटिव पर्सपेक्टिव, कहानी तीसरे पुरुष में कही गई है लेकिन कैमरा लगभग ब्लोक के कंधे पर टिका है। हम वही जानते हैं जो ब्लोक देखता या सोचता है, लेकिन उसकी भावनाओं तक हमारी सीधी पहुंच नहीं है।
अच्छा।
वर्णनकर्ता का लहजा बिल्कुल तटस्थ, लगभग नैदानिक, मतलब क्लिनिकल है। कोई सहानुभूति नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस चीजों का ब्यौरा। ये पाठक को भी ब्लोक की तरह ही बाहरी जानकारी से मतलब निकालने पर मजबूर करता है।
और भाषा एकदम साफ, सीधी, कसी हुई गद्य।
हाँ,
हैंड के अनावश्यक विशेषणों या भावनात्मक उतार चढ़ाव वाली भाषा से बचते हैं। वाक्य छोटे, सटीक होते हैं। हर चीज का वर्णन बहुत बारीकी से किया जाता है, वस्तुओं की सतह, लोगों की हरकतें। लेकिन ये बारीकी चीजों को समझाने के बजाय और रहस्यमयी बना देती है।
सही, ये सपाटपन ब्लॉक के अंदर के खालीपन को दर्शाता है।
उपन्यास की संरचना, स्ट्रक्चर भी पारंपरिक नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घटनाओं का एक सीधा सिलसिला है, लेकिन इसमें कोई स्पष्ट चरमोत्कर्ष या समाधान नहीं है। कहानी टुकड़ों में आगे बढ़ती है, जैसे ब्लॉक का टूटा हुआ अनुभव। ये पाठक को किसी कथानक में बहाले जाने के बजाय उसे हर पल सजग और बेचैन रखती है।
और प्रतीक, क्या उपन्यास में प्रतीकों का भी इस्तेमाल है या सब कुछ सतह पर ही है?
प्रतीक हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म, और ज्यादातर वो जो ब्लॉक का दिमाग खुद रचता है, जैसे वो सीमावर्ती कस्बा जो उसकी मानसिक स्थिति का प्रतीक बन जाता है, या उसे मिले अमेरिकी सिक्के जो एक अपरिचित समझ से परे व्यवस्था का इशारा करते हैं। अखबार उसके लिए लगभग धार्मिक ग्रंथ बन जाते हैं जिनमें वो अपने भाग्य के संकेत पढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रतीक तो उपन्यास के शीर्षक में ही है, पेनाल्टी किक पर गोलकीपर।
हाँ, इस पर आते हैं। उपन्यास के एंड के पास एक दृश्य है जहां ब्लॉक एक फुटबॉल मैच देख रहा है। ये दृश्य शायद कहानी का दार्शनिक केंद्र कहा जा सकता है।
बिल्कुल कहा जा सकता है। मैच के दौरान पेनाल्टी किक होती है। ब्लॉक अपने पास बैठे एक अजनबी दर्शक को गोलकीपर की दुविधा समझाता है। वो कहता है कि गोलकीपर अगर किकर की हरकतों का अनुमान लगाने की कोशिश करेगा तो किकर भी गोलकीपर की चाल का अंदाजा लगा लेगा। दोनों एक दूसरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा, तो फिर
ब्लॉक का निष्कर्ष है कि शायद सबसे अच्छी रणनीति है हिलना ही नहीं, स्थिर खड़े रहना। गेंद किधर जाएगी इसका अनुमान लगाना बंद कर देना, किकर को गोलकीपर की निष्क्रियता पर प्रतिक्रिया करने देना।
ये तो एक चौंकाने वाली अंतर्दृष्टि है। स्थिर रहना यानी दुनिया के संकेतों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने के बोझ से खुद को मुक्त कर लेना।
हाँ, एक तरह से
ये एक तरह से निष्क्रियता में शक्ति खोजने जैसा लगता है। लेकिन ये जीवन से प्रतिक्रिया करने से पूरी तरह कट जाने का भी प्रतीक है। ये ब्लॉक के अपनी लकवाग्रस्त स्थिति का ही तो बयान है। वो दुनिया को समझने की कोशिश में इतना उलझ गया है कि वो हिल भी नहीं पा रहा।
हाँ, आप सही कह रही हैं। और उपन्यास इसी बिंदु पर आकर लगभग समाप्त हो जाता है। ब्लॉक गिरफ्तार नहीं होता, गेड़ा की हत्या का मामला अनसुलझा रहता है, बाहरी दुनिया में क्या होता है ये अप्रासंगिक हो जाता है। ब्लॉक अपनी मानसिक कैद में फंसा रहता है जहां से शायद कोई रिहाई नहीं है। असली त्रासदी बाहरी घटना नहीं बल्कि आंतरिक विघटन है।
तो ये उपन्यास पाठक पर कैसा प्रभाव छोड़ता है? सहानुभूति तो शायद नहीं जगती ब्लॉक के लिए, लेकिन एक गहरी बेचैनी, एक क्लस्ट्रोफोबिक एहसास जरूर होता है। ऐसा लगता है जैसे हम भी ब्लॉक के दिमाग में फंस गए हैं।
हाँ, और ये हमें अपनी ही धारणाओं, भाषा पर हमारे भरोसे और यथार्थ के हमारी समझ पर सवाल उठाने को मजबूर करता है। ये दिखाता है कि जब दुनिया के साथ हमारा साझा अर्थ का पुल टूट जाता है तो व्यक्ति किस हद तक बिखर सकता है और हिंसा कितनी सामान्य और अर्थहीन हो सकती है।
ये एक ऐसा पाठ है जो खत्म होने के बाद भी जहन में घूमता रहता है।
बिल्कुल।
तो अंत में ये कहानी हमें आधुनिक जीवन में व्यक्ति के अकेलेपन और यथार्थ की हमारी अपनी समझ की नाजुक बनावट के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है।
शायद ये याद दिलाती है कि बाहरी दुनिया और हमारे बीच का संवाद कितना अहम है, और जब ये संवाद टूटता है तो इंसान अपने ही बनाए संकेतों के जाल में कैसे उलझकर रह जाता है, जहां हर चीज अर्थपूर्ण भी है और अर्थहीन भी।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।